قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ ما هو السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين سورة صافات کی آیت نمبر 99 سے 106 تک پڑھا اور دل ابھی بھی چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا اور آپ سب کو بھی دعا دوں گی کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ عربی کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے مطلب سمجھیں لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو اس سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت مندی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا سے اس میں سے ہم نے عملی نقطے لینے, اس لیے ترجمہ غور سے سنیے گا. ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کر لے, انی ذاہب الی ربی, یہ پہلا نقطہ, وہی میری رہنمائی کرے گا, یہ دوسرا نقطہ ہے ان آیات کا. پھر اللہ سے مانگا ربی ہب لی من الصالحین, اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. اس میں بھی نقطہ ہے کہ اللہ سے مانگا, ڈائریکٹ مانگا, اور صرف بیٹا نہیں بلکہ صالح مانگا. بیٹی کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ صرف بچے کا تذکرہ نہیں بلکہ بردبار بچے کا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی اولاد میں جو خوبی سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ ان کا حلیم ہونا ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ نرم بات کریں, آرام سے بات کرو. اکثر مائیں بچوں کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آرام سے بات کرو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بردبار اور حلیم بیٹے سے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا, یعنی بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ لڑکپن جس کو اردو میں ہم کہیں گے, 5-6-7 سال جو بھی عمر تھی, لیکن بات سمجھنے کے قابل ہوا. تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس نقطے کو بھی نوٹ کریں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے, یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں, اس میں بھی ایک عمل کا نقطہ ہے. اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, یہ بھی لے لیں, اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. فلما اسلما, پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, اس جملے کو بھی نوٹ کریں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا, اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. اور اصل ریوارڈ کیا ہے اس پہ, کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ایک کھلی آزمائش تھی. کتنا خوبصورت واقعہ ہے, سننے میں بھی خوبصورت ہے, جن کا واقعہ ہے وہ بھی بڑے خوبصورت لوگ تھے. لیکن یہاں ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے چنے ہوئے تھے, نبی تھے, فوکس تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہمیشہ محبت سے کیا اور بار بار کیا, ان کی ایک دعا کا تذکرہ ہے. لیکن اس دعا سے پہلے انی ذاہب الی اللہ یا انی ذاہب الی ربی, پہلی بات اس میں سے ہمارے سیکھنے کی جو نکلی, جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دے گی, وہ کیا ہے کہ پہلے خود اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے, پھر اللہ نیک اولاد دیتا ہے اور دعائیں بھی پھری قبول ہوتی ہیں. جیسے وہاں قو انفسکم تھا نا, تو یہاں ذاہب الی ربی. دوسری بات, رب سے مانگا رب ہب لی من الصالحین, نیکوں میں سے اللہ دینا. اس لیے कि 10 बेटे हों और उसमें एक बेटा बदकार पैदा हो जाए ना, या पैदा होने के बाद ख़राब हो जाए, तो वो 9 की 9 की खुशी ख़त्म हो जाती है। तो बेटा हो तो सालेह हो, आंखों की ठंडक हो। फबशर ना खुबी गुलाम हलीम, हमने उसको हलीम बेटा दिया। इससे क्या पता चलता है कि जब माँ बाप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक गहरा होता है और अल्लाह से ही मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगा, तो अल्लाह ताला फिर उनको अच्छी औलाद देता है। ये बहुत अहम बात होती है, बच्चे हमारे पीछे ही चलेंगे। हमें ये जुमला बार बार दोहराऊँ इन 2 दिनों में, तो शायद आपको याद हो जाए कि ऑडियो की नस्बत विजुअल ज़्यादा अच्छा सीखने का तरीका है। तो बच्चे हमसे हमारी ऑडियोस नहीं सुनना चाहते, वो हमें विजुअली देखना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। इस्माइल ने बाप को देखा था जिस तरह का, वैसे ही हुआ। फिर अल्लाह ने उस बच्चे को उम्र लंबी दी, जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो बाप ने कहा, यहाँ अगला नुक्ता जिस पर मैंने आपको थोड़ा सा रुकवाया था वो क्या था कि उस बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ, बल्कि क्या कहा, मैं ये देखता हूँ। इससे क्या एक नुक्ता निकलता है कि औलाद को डायरेक्ट हुक्म नहीं देने चाहिए कि करो जे, मैंने कह दिया नमाज पढ़ो, क्या बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज का वक्त हो गया। ये अंदाज, खूबसूरत स्टाइल, ऑर्डर कोई पसंद नहीं करता, गोद का बच्चा भी नहीं करता। तो लिहाजा बच्चों को इस तरह कहने की बजाय करो आओ करें, ये स्टाइल है इनका। फिर अगली बात देखिए कि इसमें उन्होंने बाप बेटे को सोचने की मोहलत दी। फंजुर माजा तरा, तेरा क्या ख्याल है, इसे मुफसरीन कहते हैं कि औलाद को इस नेकी में डाला, हिस्सेदार बनाया। अगर इब्राहिम खुद ही बेटे को ज़िबा कर देते तो वो सिर्फ इब्राहिम की नेकी बनती, लेकिन इब्राहिम ने अपने बेटे को अपनी नेकी में शामिल किया। तो इससे भी एक तरबियत का असूल निकलता है, और वो क्या कि बच्चों को अपनी नेकियों में शामिल रखना चाहिए। खुद ही ना उनको कह दो ये करो, बस हमने कहा है तो करो, बल्कि उनसे कहो कि अब कोई तुम नेकी की बात बताओ जो हम सब मिलके करें। फिर उसके बाद अगली चीज़ देखिएगा कि बेटे ने ये जो बात कही ना कि आप मुझे सब्र वाला पाएंगे, ये सब्र, बच्चों का सब्र क्या होता है, ओबीडियंस ही। क्या फिक्र ना करें, मेरी गर्दन पे भी छुरी चल गई तो मैं उस पर इंशाल्लाह हटूंगा नहीं। फिर अगला लफ्ज आपको कहा था फलम्मा असलमा, फिर बाप और बेटा दोनों जब झुक गए, यहाँ भी क्या कू अनफुसकुम व अहलीकुम। अभी तक हमें जो खामोश मैसेज मिल रहे हैं ना, वो क्या मिल रहे हैं कि इंसान जब खुद अल्लाह का बनता है ना तो बच्चे भी बनेंगे, जिधर आप चलेंगे बच्चे भी उधर जाएंगे। तो माँ बाप दोनों जब दीन पे आए तो बच्चा भी आ गया। फिर आप देखिए कि इब्राहिम ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ बेटे को लटा के आंखों पे पट्टी बांध के छुरी चला रहे हैं, चली तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कद सद्दकता रुया, कर लिया, हो गया, हमें बेटे नहीं कटाने आपके। हम तो ये देखना चाहते थे कि आप मेरे हमारे कहने पे ये काम करते हैं कि नहीं करते। क्या पता चला कि अल्लाह हमसे हमारी औलादें नहीं लेना चाहता। अल्लाह ने अगर बेटे ज़िबा कराने होते तो इब्राहिम का ही ज़िबा हो जाता। तो जब आज हम अल्लाह से रहनुमाई लेते हैं नबी सल्लम की सूरत में, तो हमारी औलादों को कोई ज़िबा नहीं किया जा रहा, हमसे ये नहीं कहा जा रहा कि इनको ज़िबा कर दो, हमें तो ये सिखाया जा रहा है कि इनको महज़ब इंसान बनाओ। तो अल्लाह की बात मानने से औलादें हमारी ही रहेंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की भी बन जाएंगी। इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये एक किस्म का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है कि है बड़ी मुश्किल बात थी, हम सब अपने ऊपर लेके सोचें, बेटे की गर्दन पे छुरी, अल्लाह अकबर, और छुरी भी वो जो छुरियों में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है कि जिसको जिसके ऊपर चल गई तो उसकी गर्दन कट गई। आइए इस वाक्य को बुनियाद बनाते हुए हम तरबियत के मराहल को लम्हा लम्हा देखते हैं। तरबियत का नुक्ता दो एंगल से होता है। एक होता है बच्चों की एज के एतबार से, यानी छोटे बच्चों को हम कैसे ट्रीट करें, अर्ली टीन, फिर टीन, फिर उसके बाद वाले, एक ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है रवैयों के एतबार से, यानी उनकी अखलाकी तरबियत, उनकी साइकोलॉजिकल तरबियत, उनकी इल्मी तरबियत, उनके दीन की ईमान की तरबियत, फिर इस तरह उनकी जिनसी तरबियत। ये 4 डिफरेंट एंगल हैं। कल हम उन 4 पे बात करेंगे, आज हम ओवरऑल बात करते हुए कि हम कहाँ से शुरू करें। पहली बात ये है कि बच्चों की तरबियत जो है ये एक बहुत अहम काम है, हम सबको इसको एक ज़िम्मेदारी समझना चाहिए, ये खेल नहीं है, ایک زندہ جان کا وجود میں آنا کھیل نہیں ہوتا. بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ تمہارے کھیل میں اگر ایک زندگی وجود میں آ گئی تب اس کو قتل کر کے خود ہی قاتل نہ بنو. لیکن حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اسلام میں بچوں کی تربیت کا آغاز رشتے کے انتخاب سے ہوتا ہے. آپ کیسی عورت سے شادی کرتے ہیں؟ چونکہ ہم ساتھ ساتھ اس امت مسلمہ کے بچوں پہ بھی لے رہے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں شادی پسندیدہ عمل ہے, شادی اسلام کے اندر عبادت ہے. ایک خاص عمر پہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی شادی نہیں کرتا اور گناہ میں پڑ جاتا ہے تو یہ جرم ہے. پھر شادی کے لیے اسباب حالات ہوں صرف اس وجہ سے کہ چلو ابھی میں اور آزاد رہ لوں اور کچھ نہیں ہوتا, یہ ناپسندیدہ ہے. اسلام نے اس پہ بہت کہا, میں اس پہ دہراؤں گی نہیں اب, کیونکہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے پیچھے کے سیشن جو ہمارا نکاح A to Z تھا اس میں کافی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی, میرڈ لائف پہ بھی کی تھی اور نکاح پہ بھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ شادی انسان کی فطرت ہے. آج جو ہمارے معاشروں میں گڑبڑ ہو گئی, جہاں سے ہماری نسلیں ٹھیک نہیں نکل رہیں, اس کی ایک بڑی وجہ اس سے پہلے کا مرحلہ بھی ہے کہ لوگ شادی کو پسند ہی نہیں کرتے. اسلام کہتے ہیں شادی جلدی عمر میں ہو, وقت سے پہلے نہ ہو, سوری, جب جذبے ابھرے اسی کے ساتھ اس کا انتظام کر دیا جائے. اسلام نے اس کو پسند کیا, پچھلے ہم نے سیمینار میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی. لیکن آج کے نسل کا ایک مسئلہ کیا ہو گیا, سب کا نینا, میں آپ میں سے کسی ینگسٹرس کو کہہ رہی ہوں, لیکن ایک اوور آل جو کہانی سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ شادی کو لوگ بوجھ سمجھنے لگ گئے, پاؤں کی رکاوٹ سمجھنے لگے. ایک جملہ جو میرے کانوں سے ٹکرایا ایک ماں کے زبان سے, اس نے مجھے رات بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا. بچے کو کہا کہ شادی کر لو, کرنی ہے شاید, کوئی غلط کام نہ کرنا, شادی کر لو. تو اس نے کیا کہا, اچھا بھی شادی کر لو, آپ کا مطلب ہے میں آپ کے کہنے پہ 21-22 سال کی عمر میں شادی کر لوں تاکہ 30-25-30 تک میرا دل اس سے بھر جائے, پھر میں کیا کروں گا. یہ جملہ مذاق میں کہا ہوگا نا, یا نان سیریسلی, یعنی آج یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بچوں کو لگتا ہے. یہ سوسائٹی میں ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد کے ساتھ ساری زندگی گزار دے. ہم خود اس کو ایکسپیرینس کر چکے. ایک موقع پہ ہم کاؤنٹر پہ تھے کہیں, میں اور میرے ہسبینڈ, تو اس نے ہمارے جب فگرس لکھے تو اس میں اس نے میری شادی کا پوچھا, تو غالباً 10 سال بتایا. تو وہ عورت بڑے حیران ہو کے میرے ہسبینڈ سے کہنے لگی, تم 10 سال سے ایک ہی عورت کے ساتھ ہو. یقین کیجئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج یہ جو مسئلہ ہے اس سے آگے چلیے, چلے شادی تو جو ہونی سو ہو گئی, کس طرح کی شادی ہو, کس سے ہو, اس کے لیے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. ویب سائٹ پہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ موجود ہے, بہرحال آڈیوز کی صورت میں تو ہے ہی ہے, جس میں شادی کے سارے لوازمات میرا گھر میری جنت کے نام پہ موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ شادی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, ایک اچھی عورت سے شادی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی پھر آگے جا کے دوسری طرف لے کے جاتی ہے. حضرت عمر کے پاس جب ایک مرد نے اپنے جوان بیٹے کی شکایت لگائی تھی کہ یہ میری بات نہیں مانتا, تو اس کو سمجھائیں, تو جب اس حضرت عمر سے اس شخص نے, لڑکے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے بھی کوئی حقوق ہیں باپ کے ذمہ, تو حضرت عمر نے پہلا حق یہ بتایا تھا کہ تیرے باپ کے ذمہ تیرا پہلا حق کیا تھا کہ تجھے ایک اچھی ماں دیتا, پھر تیرا اچھا نام رکھتا, پھر تیری تربیت کرتا. تو اس نے کہا بس پھر ٹھہر دے, میرے باپ نے میرے تینوں ہی حق نہیں دیے. اس نے ایک مجوسی یعنی مشرک کافر عورت سے شادی کی, اس نے میرا نام جوالا رکھا, اور ماں چونکہ کافر تھی اس نے میری تربیت اسلام پہ نہیں کی. تو حضرت عمر نے پھر اس بزرگ سے کہا کہ آپ اس مرد بچے کو لے جائیں, قصور اس کا نہیں آپ کا ہے. تو شادی بہت اہم موضوع ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا, یہ حقیقت میں انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شادی کے اندر جتنی خرافات ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہیے, اس کا اثر بھی بچے پہ آتا ہے. ایک عورت جس کا حصول بہت آسان ہو وہ مرد کے لیے بابرکت بھی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے, شوہر بیوی کا جو تعلق ہے, اس کا آنے والے بچے پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے اس جذبے میں اس میں بھی حدوں میں رہنا چاہیے. اگر خود آپ اپنی سیکس پہ قابو نہیں پا سکتے, شادی ہونے کے باوجود حلال چیز ملنے کے باوجود اس میں کچھ حرام چیزوں کو لے آتے ہیں, تو آپ کیسی نسل کو پروان چڑھائیں گے, اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی. بچے ہر چیز نہ صرف یہ کہ دیکھتے سنتے بلکہ محسوس کرتے ہیں. تو لہٰذا شادی کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے پریگننسی. عورت پریگننٹ جب ہو جاتی ہے اس کے دوران عورت کو کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے میرے سے زیادہ اچھا آپ کو یہ کتاب دکھائے گی. یہ میرے ہاتھ میں آپ ایک بک دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ماں بننے والی ہیں, بڑی کمپلیٹ انٹرسٹنگ बुक है, खास तौर पे अगर आप में से कुछ लोगों को सेहत के असूल, इसमें बेसिकली पूरे प्रेगनेंसी के वर्क को इजी करने के लिए हेल्थ वाइज साइकोलॉजिकली खुश रहना, इसकी बहुत सारी टिप्स हैं। मैं दोहराऊंगी नहीं ये सारी बातें क्योंकि ये अपनी जगह एक पूरा मौजू है कि बच्चा माँ के पेट में क्या कुछ कर रहा होता है, कैसे होता है। लेकिन चूंकि हम मौजू ले रहे हैं तरबियत का, इसमें यानी आपको वो चीज़ें दिखेंगी कि जो माँ के लिए बहुत ईजी है और स्पेशली बाद में पैदा होने वाले बच्चे के लिए बहुत असरअंदाज है। लेकिन मैं इसमें आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जब इस तरह के मामले हों, बच्चा पेट में हो, तो आप केयरफुल रहें। यानी मेरी बात सुनने वालों में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बस बी केयरफुल, अंदर से कोई आपको देख रहा है, उसको महसूस है, अच्छे काम करें, अपने आप को खुश रखें, कुरान अभी से पढ़ना शुरू करें। अभी आपको सुना रहे थे एक बच्चे की तिलावत की आवाज़, 3 साल का बच्चा और इस तरह कुरान की आयतें और सूरतें पढ़ता है कि जैसे शायद हमारे बड़े भी नहीं पढ़ते। कोई बच्चा कहता है कि मैं फलां सूरत बहुत अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ क्योंकि माएँ बहुत पढ़ती हैं। फिर याद रखिए, सिर्फ कुरान नहीं, तकवा, इखलास। हमारे बड़े एक बात कहते थे, दूध का असर होता है, कहते थे ना, बच्चा माँ की कोख से बहुत कुछ लेकर आता है। तो बच्चे के माँ की प्रेगनेंसी के दौरान घर वालों को भी बहुत तावन करना चाहिए उसके ऊपर, जैसे हम दूसरे काम कम कर देते हैं ना। मैं कहती हूँ कि कोई वैसे कुरान से, दीन से, अल्लाह के दीन की खिदमत से ज़रा कटा हुआ है ना किसी वजह से, जो ही प्रेगनेंट आए हो आके ना, तो मिन्नत समाजत करके कोई अपने लिए काम ले ले कि प्लीज़ मुझे यहाँ कोने में बैठने दें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी सुने। क्योंकि ये तरबियत जो अंदर से शुरू होगी ना, इसका रंग बड़ा गहरा होगा। क्योंकि हम लोग इसको ये नहीं सोच सकते कि ये ज़ाया होता है। बच्चे आप सुनते भी हैं, आपने अल्ट्रासाउंड के दौरान बाज़ लोगों से सुना होगा कि डॉक्टर्स बताती हैं कि इस वक्त तुम्हारा बच्चा ख्वाब देख रहा है, वो देखो मुस्कुरा रहा है, बच्चा पेशाब कर रहा है, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये बच्चे के ऊपर यकीनन असरअंदाज होती हैं। माएँ कोशिश करके अपने वक्त का कुछ ख़ास हिस्सा अलग रखें। अब हमारे यहाँ कल्चर में एक दो चीज़ें मारूफ हैं, उसकी भी इसलाह करवा दूँ कि जी सूरत मरियम पढ़ें, आसानी होगी, सूरत यूसुफ पढ़ें तो बच्चा खूबसूरत होगा। हमारे सुबल इस्लाम के स्टूडेंट से पूछ लें कि सूरत यूसुफ क्या कहती है, अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं, हैरत होती है, जोक लगता है उस वक्त ये बात कि क्या ये ज़ाहरी हुसन के लिए लोग पढ़ते हैं। पूरी सूरत में हज़रत यूसुफ के ज़ाहरी हुसन का एक दफ़ा भी तस्करा नहीं। हाँ, इसकी तफसीर सुने, कुरान सुने, कसरत से पढ़ें, सुने, सोचें अच्छी रखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। हमारे असलाफ की माएँ बहुत ख्वाब देखती थी। एक प्रेगनेंसी के दौरान आप जो काम नेकी का कर सकती हैं तरबियत के नाते से, वो क्या करें, कोई मन्नत मान लें, इन्नी नज़र तुलक माफ़ी बतनी महर्ररा। बीबी मरियम की माँ ने मन्नत मानी थी, पीछे आपको सुना चुकी हूँ। अल्लाह ने फिर कैसी प्यारी बेटी दी कि उसकी नस्ल से एक पूरी कौम चल पड़ी। इसी तरह एक मन्नत इमाम बुखारी की माँ ने मांगी थी, बच्चा पेट में था। और हमारा जब इस्लाम का रूज होता है ना, तो उसका उसका एक अलार्मिंग सिस्टम क्या है कि माएँ पेट के बच्चों के लिए मन्नतें मान लेती होती थी कि बस इसके लिए तो मैंने ये मान लिया। कोई कहती थी इसको, अच्छा हमारे कल्चर में हाफिज़ का बहुत रिवाज है, पहले ऐसा नहीं था। आप पढ़ें इंशाल्लाह, आप हमारे पास यहाँ मुस्लिम हीरोज़ की भी क्लासेस होती हैं, सहाबा के किस्से हम पढ़ते हैं और सहाबियात के। अक्सर जो थी ना, वो कहती थी हम इनको मुहद्दिस बनाएंगे, नबी सल्लम की हदीस से सीखेगा, कुरान की तफसीर और नबी सल्लम की हदीस, ये दो शौक होते थे। मैंने तो, मुझे याद नहीं कि किसी माँ ने ये कहा कि इसको हाफिज बनाओ। एक शख्स थे, अपनी बीवी को कुछ पैसे दिए, किसी सफर पे गए, उस दौर में सफर बड़े लंबे चौड़े होते थे, थोड़े से पैसे दिए, उसके बाद कई साल आई ना। खैर, वो माएँ भी सब्र वाली थी, औरतें भी, उस औरत ने उस बच्चे को पाला और काफी साल हुए तो बाप वापस आ गए, घर आए, पूछे क्या हाल है बेटा, किधर है, वो पैसे किधर है जो दे गया था। कहने लगी सब्र करें, ज़रा हौसला करें, आप नमाज का वक्त हुआ है, नमाज़ पढ़ें, मस्जिद से फिर आएँ तो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। मस्जिद में गए तो वहाँ एक बड़ा खूबसूरत जवान होता हुआ बच्चा मिंबर पे खड़ा, बड़ा खूबसूरत दर्स दे रहा है। कह रहे, वाह कितने खुशकिस्मत है माँ बाप जिनका ये बच्चा है, क्या सीखा है इसने, कुछ नहीं, ये सारी बातें कर करा के वापस आए। तो थोड़ी देर गुजरी तो दरवाज़ा खटका, तो वही बच्चा घर आ गया। माँ ने कहा, ये है मेरे इतने साल की मेहनत है, वो जो पैसे तो मैंने सारे इस बच्चे की तरबियत पे लगाए, इमाम रबी के नाम पे, वो बड़े मारूफ इमाम गुजरे हैं। माँ का शौक ही एक होता था, कोई एक तबकी देती थी, कोई दूसरी तबकी देती थी, कभी उम्मे अमारा को देख लीजिए, कभी अस्मा बिनत अबी बकर को देख लीजिए, इतनी माएँ, इतनी माएँ। आज वो माएँ नहीं है क्योंकि हम ख्वाब नहीं देखते। तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखें कि इसको मैं क्या बनाऊंगी, ये क्या करेगा, अभी से उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेट करें। और वो वाकया मैं बहुत दफ़ा सुना चुकी हूँ कि इमाम शाफी के पास एक औरत आई गोद के बच्चे को उठाए हुए और कहा कि मुझे नसीहत करें कि मैं इस बच्चे की अच्छी तरबियत करूँ। तो बच्चे को देख के कहते हैं कि माँ तूने आने में देर कर दी। फिर देर कैसे कर दी, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। कहा अगर तू इसकी बेस्ट तौर पर तरबियत चाहती थी उस वक्त आती जब ये तेरे पेट में था, ठीक है, तो ये वक्त ज़ाया करने का नहीं होता। ये बच्चों की शॉपिंग और न जाने उस दिनों में भी हम देखें कि आज कितना कल्चर ही बदलता जा रहा है, ये चीज़ें छुपाई जाती थी, अब बच्चे बच्चे को पता होती हैं। बहरहाल ये भी एक कहानी है, लेकिन यह है कि उस दौरान अपने आप को अनअटेंडेड ना छोड़ें, अपनी सोचों की हिफाजत करें। अगर आप चाहती हैं कल आपका बच्चा सुबह शाम की दुआएं पढ़े तो अभी से शुरू कर दें आप। अगर आप चाहती हैं रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़े, आप भी पढ़िए, सूरत सजदा पढ़े आप भी पढ़िए, जो काम आप कल उससे कराना चाहते हैं ना वो भी कराएं। और देखिए ये आसान है कि नहीं, मैं आपको इसको एक चीज़ से रिलेट करके बताती हूँ। आप में से अक्सर सिस्टर्स के छोटे बच्चे भी होंगे तो बड़े भी होंगे, हर दौर में क्या माँ ये नहीं सोच रही होती कि हाय अभी बड़ा मुश्किल है इस बच्चे को पालना, ज़रा सा बड़ा हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। पहले वो 40 डेज में मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे रातों को जगाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं माँ कहती नहीं उठा उठा के थक गई हूँ, ज़रा ये बैठने लग जाए, चलो अब ये चलने लग जाए। पहले चलने पे खुश होते हैं, बाद में उसके चीज़ें तोड़ने पे नाराज़ हो रहे होते हैं, है ना। हर दिन हम सोचते हैं ना कि नहीं ये पहले ठीक था, पहले ठीक था। बिल्कुल इसी तरह से आप ले लें कि माँ के पेट में आप इसको जो सिखा लें कहाँ भागेगा, बाहर निकल सकता है, हैं रो भी नहीं सकता। आम बाहर तो चला बच्चे को कुछ कहेंगे तो वो रोएगा, माँ के पेट में रोता है तो पड़ा रोता रहे, आपको तो नहीं आता ना। तो जिसको कहते हैं ना कि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने उसके नतायज अच्छे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। फिर शौहर और बीवी को इन दिनों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सूरत आराफ में अल्लाह ताला ने बताया कि जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है फिर उसका मर्द आपस में बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर वो उस बच्चे की तरबियत में और उसकी देन में शिर करने लगते हैं और बिलाखिर फिर वो बच्चों के हाथों से निकल जाता है। तो लिहाजा प्रेगनेंसी के दौरान ही तरबियत होगी। ठीक है आप प्रेगनेंसी में उसको बोलना नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो आप अपने बच्चे के दिल को धड़कना सिखा रहे हैं, आप उसके मैदे को काम करना सिखा रहे हैं। तो तरबियत एक असाब शिकन काम होता है, लेकिन माँ के पेट से शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। आज हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों का बचपन ज़ाया कर देते हैं, बहुत बड़ा जुर्म है। यानी अगर मुझे कोई कहे कि मैं पीछे जाके दोबारा अपने बचपन से अपने आप को सेल्फ टेलर मेड करूँ तो मेरे हल में अपने इस मामले को पसंद करूँगी। इंसान बहुत सारी चीज़ें सारी ज़िंदगी अपनी छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ सकता। तो बहरहाल बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करें, पैदा हो गया बच्चा, खुशी महसूस कीजिए, बच्चे को बोझ नहीं समझना। एक जुमला जिसका आगे तस्करा कई बार आएगा वो भी समझ लें कि हर बच्चा अल्लाह का फैसला है। प्रेग्नेंट अगर हो गए ना शुक्र करें, ना तो अबॉर्ट करवाना है, यानी ना तो प्रेगनेंसी पे बच्चे को अबॉर्ट कराना है और ना ये कहना है कि ये अनवांटेड चाइल्ड है और अनप्लान्ड चाइल्ड है। बाद लोग इतना जुल्म करते हैं अपने बच्चों पे, वो बड़ा भी हो जाता है कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तुझे किसने बुलाया था। और अक्सर लड़की एक से दूसरी हो जाए तो नानियाँ दादियाँ भी यही लाड करती हैं, तू क्यों आई, तुझे किसने बुलाया, इस तरह की बातें करती। आप अपने ऊपर लेके सोचें, आपको कोई कहे कि मैंने तो नहीं आपको आज बुलाया था, आप क्यों आ गई हैं, कैसा लगेगा। तो हर बच्चे की पैदाइश का होना खुशी का जरिया है, खुश हो, अल्लाह का फैसला, आपका नहीं था प्लान, अल्लाह का था। ममा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, खुशी महसूस करें उसके ऊपर और कभी भी अबॉर्शन का सोचे भी ना। ये भी एक बच्चे का हक है कि उसको दुनिया में आने दिया जाए, इसको हम समझते नहीं हैं, क्योंकि पैदा होते बच्चे को आप मार देंगे तो क्या होगा। तो लिहाजा बच्चे को कभी सोचिए भी ना, किसी को दे दें। ये भी वैसे मेरा ख्याल है कि पसंदीदा अमल नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो कहा कि उन औरतों से शादी करो जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं ख़ानदानों में, मैं अपनी उम्मत की कसरत पे अपने यानी उम्मत पे फ़ख्र करूँगा। तो इस पे ना सोचिए, बहुत सारे लोग इस चीज़, क्योंकि हम अपने ऊपर लें, हमें कोई अवॉर्ड करवा देता तो वो, एक मैंने जोक भी सुनाया था ना कि एक इंग्लिश का था थी, तो उसमें सुना था किसी का कि एक बच्चा, एक औरत थी तो उसके 8-10 बच्चे थे गालिबा, तो उसमें से एक बच्चा एक दिन माँ को कहता है अम्मी तुम्हारे इतने बच्चे क्यों हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है अपने दोस्तों से। ये भी अब एम्बेरसमेंट हो गई है जी कि इतने बच्चे हैं, माएँ खुद कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं, यकीन करें 4 से ऊपर बच्चे होना कहते हैं हम 4-6 बच्चे लेके जाएं, हम 5 बच्चे लेके जाएं, हालांकि बुरी बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो माँ को कहने लगा आपके क्यों इतने बच्चे हैं, तो माँ कहने लगी ये बताओ मैं कहाँ रुकती, यानी मुराद मेरे कितने होने चाहिए थे, तो कहने लगा आफ्टर मी, बस मुझे पैदा करती फिर छोड़ देती, और आपका तो उसका क्या नंबर था, 9वां नंबर। तो बात यह कि हम में से हर एक तो दुनिया में आना चाहता है लेकिन दूसरे को नहीं बुलाना चाहता। तो बहरहाल इसके बाद फिर बच्चा पैदा हो, खुशी मनाएं उसकी, बच्चे की पैदाइश अल्लाह की नेमत समझें। और आप याद रखिए कि हर बच्चा पहला बच्चा नहीं होता और हर बच्चा बेटा भी नहीं होता, बेटी भी हो सकती है। आप बेटा चाह रहे थे, बेटी हो गई, कोई बात नहीं। बाद लोग कहते लड़कों की आस में लाइन लगा ली है, भाई ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, 6 बेटियाँ इकट्ठी हो गई, बेटा फिर नहीं हुआ। चलो फिर कुछ साल बाद सोचते हैं गलती लग जाएगी फरिश्तों को, फिर बेटी हो जाती है। कहते हैं बस पता होता तो हमने तो प्लान ही नहीं करना था। खुश हो जाएं, अल्लाह के फैसलों पे राजी रहें। जितनी प्यारी बेटियाँ होती हैं बेटे तो केयर भी नहीं करते। तो ये बेटा बेटी सिर्फ एक लफ्ज़ है, वरना यकीन करें आज के दौर में तो इसका कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि मुबारक दी जा सकती है बच्चे के पैदा होने पे, बच्चे को की तहनीक की जाएगी, खुट्टी दी जाती है, शहद चुटा जा सकता है, खजूर जो गीली खजूर होती है उसको नरम करके तालू में बच्चे के मुंह में लगाया जाए, मसनून है। अब आप डॉक्टर हो तो आपको पकड़ लेंगे, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या कुछ कर रही हैं। आपने कभी अपनी शहद की बॉटल पर देखा होगा कि 2 साल के उम्र बच्चों को मत दीजिए। क्या आप देखिए कि नबी सल्लम पैदा होते बच्चे को देते थे। तो लिहाजा इसके ऊपर जो भी सुन्नतें हैं इस उम्र की उसको करना चाहिए, बच्चे के सर के बाल मुंडवा देने चाहिए। फिर इसके बाद ये है कि बच्चे का अकीका करना चाहिए। तो अकीका देखिए कि 7 दिन के अंदर करना चाहिए, इसके बाद भी करेंगे तो सदका हो जाएगा। ये असल में बच्चे की हड्डियों का एक कफारा होता है। ये देखिएगा हमने जो बात की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की तरबियत, तो पहला हक तो बच्चे का उसको ज़िंदा रहने दें। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं वला तक्तुलु औलादकुम खशयत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन क़त्लहुम कान खितअन कबीरा। अपनी औलाद को भूख और अफलास के डर से कत्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी, और इनका कत्ल बहुत बड़ी खता है। ये देखिए प्रेजेंटेशन पीछे देखिए, ये देखिए गार्बेज कैन है काले रंग का, जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को माएँ जाके डाल देती हैं और उनको नहीं चाहिए होते ये बच्चे। ये देखिए बच्चों को किल करने का एक तरीका होता है कि बच्चे को किल करके बाद में ये जार्स में डाल के फिर रिसर्चेज वगैरह करते हैं। और बहुत ही कराहत के साथ सुनिएगा कि कुछ मुल्कों में न्यू बॉर्न बेबी का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत मज़े का होता है। ये देख लीजिए एक बच्चा 11 वीक की माँ प्रेग्नेंट थी, जब उसका एबॉर्शन किया गया, कट लगा हुआ आप देखें लेटा हुआ पूरा बच्चा, हाथ पाँव आपको दिखेंगे कि ये बच्चा पूरे का पूरा हो चुका होता है। ये डॉक्टर माँ के पेट में से अगर बच्चे को निकाल रहा है, ये देखिए न्यू बच्चे को मारने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाता है, आप देखें कि छोटा सही लेकिन है तो सही। ये देखिए माँ के पेट से बच्चे के हाथ डॉक्टर की उंगली को पकड़ते हैं, कोई जा सकता अपने बारे में। ये देखिए बच्चे की बाजू, धोखा देते हैं लोग ये कि अभी तो जिंदा नहीं हुआ और अभी हुआ नहीं। ये देखिए सॉल्ट पॉइजनिंग जरिए से एक तरीका होता है, माँ के पेट के अंदर एक जहरीला मादा भेजते हैं सरिंजों के जरिए, फिर वो यूट्रस में जाता है तो उस नमक से या तेजाब होता है उससे बच्चा जल जाता है, फिर टुकड़े कर करके बच्चे को निकालते हैं। ये सारा जला हुआ बच्चा आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप बच्चा जल गया इसे, और माँ के चूँकि पेट में कट जाता है जिसमें माँ को तकलीफ़ कम होती है, बच्चे को बच्चा तकलीफ़ सह लेता है। आप देखिए ये कैंचियों के साथ बच्चे को काट के निकाला जा रहा है, इधर से उसकी गर्दन काटी जा रही है, ये उसके पांव पकड़े जा रहे हैं, पार्शल बर्थ एबॉर्शन यानी टुकड़ों में काट के बच्चे के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि मुर्गी को काट रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं। और अब ये देखिए ये जरा देखिएगा जो आज हमारे मौजू पे तल्लुक है, कीप योर लॉस ऑफ माई बॉडी, ये नारे औरतें लगा रही हैं कि आप ये एबॉर्शन को नजायज़ कहने वाले जो अपने कानून अपने तक रखें हमारे जिस्म पे ना लगाएं इसको, ये फाइट कर रही हैं कि हमें एबॉर्शन का हक दिया जाए। और अगर सिर्फ एबॉर्शन पर बात कर लें तो भी करेंगे हम, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम टीनेज तक पहुँच जाए जिस दौर का ये मसला है, लेकिन बच्चे को पैदा होने तो थोड़ी सी तो केयर करें। पैदा होता है खुशी मनाएं, उसका सर मुंड के उसके बाल उतार दें, फिर इसी तरह से ये कि उसका अच्छा नाम रखें, नबी सल्लम की सुन्नत थी। फिर इसी तरह अकीका रखा किया जाएगा, फिर इसी तरह ये है कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए जाएंगे, ये वो प्यारी सुन्नत थी कि जिसको आज माँ ने छोड़ दिया। نام کب کہاں کیا رکھا جائے اس کے بارے میں بہت ساری گائیڈ لائن آپ کو ملیں گی. میں یہ سلسلہ اس لیے ذرا جلدی اسکپ کر رہی ہوں کہ میں نے اس موضوع پہ الگ سے کافی جگہ درج کی ہے. میں آپ آن لائن پہ دیکھیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ سارے لیکچرز آپ تک پہنچیں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے خود بھی فائدہ لیں اور دوسروں کو دیں. آپ کی دوستوں میں, ریلیٹیوز میں, جو بھی کوئی پریگننٹ عورت ہے نا, آپ ہم سے ہی ریکویسٹ کر کے وہ سارے لیکچرز لے لیں جو بچوں کی شروع سے لے کے تربیت کے, آپ ان کو دیں, ان کی سی ڈیز بنا کے دیں, کچھ بھی دیں تاکہ سنائیں, یا جہاں سے بھی کہیں آپ کو کوئی اور بھی کسی کا مواد ملتا ہے تو دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نام رکھنے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے, باپ کے نام کے ساتھ نام ہونا چاہیے, بچے کو کسی دوسرے کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے, برے نام نہیں رکھنے چاہیے. ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, یہ نام بھی نہیں رکھا جا سکتا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا نام جو محمد تھا وہ رکھا جا سکتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم پھر پورا بھولتے ہیں, تو نیت کی بات ہے نا. اگر آپ نے اپنے بچے کا نام محمد ابراہیم رکھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ واحد بات میں بہت سارے موجود ہیں. امام مسلم کا نام محمد تھا, تو بہرحال آپ نبی کا نام رکھ سکتے ہیں. اللہ کے ناموں میں کچھ نام ہیں جو نہیں رکھ سکتے, جو جیسے رحیم نام ہے, رحم سے سپرلیٹیو ڈگری ہے. اسی طرح رحمان نام ہمارے یہاں کتنا عام ہے, آپ رکھیے لیکن عبد الرحمان. اسی طرح جتنے بھی وزن ہیں نا, رحیم, فائل, ہاں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر علیم ہے. ان سب کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا لازمی ہے. لیکن کچھ نام ہیں جیسے مومن, اللہ کا نام بھی ہے, بندے کا بھی ہے مومن نام, وہ مومن رکھ لیں یا عبد المومن رکھ لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ناموں میں آپ کسی ایسی مشہور شخصیت کا رکھ سکتے ہیں کہ جو اسلام میں معروف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نہیں بدلے, جیسے خالد نام, ہمیشہ رہنے والا. اب کیا کریں, اس کو رکھ لیجیے کوئی بات نہیں, کیونکہ خالد بن ولید تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی نام ایسا ہوتا کہ جس کو آپ ناپسند کرتے پھر آپ اس کو بدلوا دیتے تھے. تو بہرحال اگر آپ میں سے کسی کے بچوں کے ناموں میں کوئی ایسا نام ہے جو ناپسندیدہ ہے تو بدل لیجیے, اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ہماری ایک اسٹوڈنٹ, انہوں نے پچھلے 2-3 ویک پہلے اپنا نام بدلا. ان کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی, نام تھوڑا شاہی قسم کا تھا جیسے بادشاہ اور اس طرح کا نام ہوتے ہیں, تو انہوں نے چینج کر کے کہا آپ رکھ دیں کوئی, تو فاطمہ نام رکھ لیا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح عقیقے کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے کلچر میں کہ ایک بکرا ہو کہ دو ہو. دیکھیں کہ آپ ایک کرتے ہیں کہ دو کرتے ہیں, دو کر لیں بکرے, بیٹے کے لیے دو بکرے. اور میں یہاں اس وقت کوئی فقہی باتیں نہیں بتا رہی. اگر آپ اس میں اپنی کسی بھی خاص فقہ کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عالم صاحب یا امام صاحب کہتے ہیں, شوق سے کریں, ان چیزوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے, یہ سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بکری کا, بیٹی کا ایک کر لیں, اور اگر آپ بیٹی کے بھی دو بکرے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری امت کا آج حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھر کھا جاؤ اور پروں پہ بات کرو. بڑے بڑے مسئلے نکلے ہوئے اس وقت ہم نے, حرام کے بھی جس میں شرن قباحت ہے, بڑے بڑے سود اور کیا کچھ ہوں گی چیزیں, لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا جھگڑتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی وجہ سے دین اتنے حصوں میں بٹ جاتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد اگر بیٹا ہے آپ کا تو اس کا ختنہ کیجیے, یہ سنت ہے. اور دیکھیے کھانے والے وقت میں یہ چیزیں سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں تو سارے ہی لوگ کرائیں گے. آج یہ ختنوں کی جو چیز ہے اس کی گواہیاں تو سائنس سے مل گئیں کہ جن بچوں کے یہ ختنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بعد میں اس طرح کی سیکشل ڈیزیزز کم ہوتی ہیں اور ان کی بیویوں کو ایسی تکلیفیں نہیں ہوتی. تو لڑکے کا ختنہ جو وہ کیا جاتا ہے, کسی حد تک عورتوں کے لیے بھی ایک خاص ایک جگہ ہوتی ہے بچیوں کے جسم میں, اگر اس کو بھی بچپن میں اتروا دیا جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ بعد میں بہت سارے اس طرح کے جو پیریڈس کے اور اس کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے. لیکن اب یہ میرے منہ سے آپ سن کے بہت آپ کو عجیب لگے گا, کیونکہ ہمارے کلچر میں تو دور تک ایسی چیز نہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, اس کے اوپر بہت جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دودھ پلانا کیا مدت ہے, 2 سال. لڑکا اور لڑکی کی کیا یہ فرض ہے؟ نہیں, 2 سال حد ہے. اس سے پہلے پلا لیں, بیچ میں چھڑا لیں, کچھ بھی کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا بچہ ہے, انسان کا بچہ ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا تو اب آپ نکالتے اس کو کسی جانور کا دودھ پلا رہے ہیں. انسانیت پیدا کرنی ہے تو اس کو انسان کا دودھ پلانا چاہیے نا. یہ ایک بہت پیارا آلٹرنیٹ اور بہترین چیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ماں اور بچے کی ایسوسیشن بھی رکھی ہے. پھر دودھ پلاتے ہوئے ماں جس حالت میں ہوتی ہے بچے کو بالکل اسی طرح سے لگتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں تھا, ماں سیکیور ہوتی ہے. پھر ماں کے چونکہ وہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں تو وہ بوٹل بھرنا, دھونا, رکھنا, آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں, پہلے تو نہیں تھی. تو بچے کو دودھ پلانا آسان تھا کہ ماں خود بھوکی رہ لے گی لیکن بچے کو کھانا ملتا رہے گا. پھر اس میں بھی بعض دفعہ لوگ اپنے فگر کی خرابی کے خوف سے نہیں پیتے پلاتے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ زبردستی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاؤ, माँ बीमार हो जाती है। ये ब्रेस्ट कैंसर जो है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये हो रही है कि माँ दूध नहीं पिलाती। आप खुद भी सोचे ना, एक सिक्रीशन थी उसको जिसम से निकलना था, नहीं निकलने दे रहे, तो कहीं ना कहीं किसी गिल्टी की सूरत में वो कुछ ना कुछ उसका मवाद तो जम जाएगा ना। और इससे सूदिंग फीलिंग आती है, माँ को और बच्चे को एक किस्म का कुर्ब मिल जाता है, और अल्लाह ताला इस तरह से पिलवाता है कि आज तुम उसको इस तरह पिलाओगे ना, फिर कल जब तुम बड़े बूढ़े और हो जाओगे तो उस वक्त फिर वो भी तुम्हारे साथ इंशाल्लाह इसी तरह प्यार का मामला करेंगे। ह्यूमन टच जो होता है ना, इसमें बहुत एनर्जी होती है। लम्स बच्चे को अपने हाथ से लें, प्यार करें, ग्लव्स पहन के, और जरासीम लग जाएंगे और लोशन लगा के, आजकल तो 10 किस्म के डिसइंफेक्शन, और के छोड़िए आप इंसान हैं, आपको क्या हो गया है? इतना आर्टिफिशियल बच्चों को शुरू से मादी कर देते हैं, क्रीमों का, इसका उसका, सब फेंक दें, आउस भी कलीमात पढ़ें, बिस्मिल्लाह इल्लाज़ी पढ़ें, साफ सुथरे रखें अपने बच्चे को। हमने इतने अपने बच्चे के इर्द गिर्द लवाजमात रख ली कि बाज़ हमारा टच भी नहीं उसको मिलता। छुएं, प्यार करें, नंगे बदन पे उसके गुदगुदाएं, उसको हाथ लगाएं, वो देखिएगा ये सब आपको बाद में देगा वापस। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो बाद में बच्चे भी हमें फिर मशीनों पर डाल देते हैं। आप देख लेंगे वो दबाने वाले, मसाजर और क्या कुछ बूढ़े माँ बाप को बच्चे भेज देते हैं, लेकिन खुद पास बैठ के उनको टच करना, उनको दबाना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो जितनी आप बच्चे की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला वो सारी की सारी आपको मिलेगी। फिर जब बच्चा छोटा ना, उसको बहुत कुरान सुनाए, आप हर वक्त तो नहीं पढ़ सकते ना, तो बच्चे के लिए आप आजकल छोटे छोटे आईपैड्स हैं, आईपॉड्स हैं, आप USB से उसमें डाल के कुरान डाल दें। बच्चों के झूले आजकल इस तरह के आए हैं कि उसमें उन्होंने म्यूजिक के लिए क्यों नहीं रखा हो। मैं तो देखा लोग बाथरूमों में भी म्यूजिक और स्पीकर्स के इंतजाम करते हैं, तो झूले में लगाना क्या मुश्किल है। शुरू से कुरान चला दें, तरतीब बनाएं, हर दिन बच्चे को एक सपारा पढ़ाएं, पूरे को महीने का एक कुरान पढ़ाएं। यकीन करके आप में से जिसका बच्चा होने वाला या हो चुका है अभी रिसेंटली, उसके साथ करें ये चीज, रोज का एक सपारा सुनाएं, और देखिएगा अगर वो एक 6 महीने भी आपने सुना दिया ना, तो जब कल वो कुरान पढ़ेगा तो उससे बहुत फायदा होगा। फिर इस तरह कभी उसको इल्मी बातें सुनाएं, आप कहते हैं उसको समझ नहीं आती, नहीं, आप कोई लेक्चर चला दें, कोई हदीसें सुना दें, कोई अरबिक सुना दें उनको, कोई अल्लाह के नाम सुनवाइए, देखिएगा कि वो फारिग बैठा से, और करना क्या होता है उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने रोते हैं या खाते हैं। अभी कितनी अच्छी मैंने स्लाइड देखी थी, 3 चीज़ें ही होती हैं बच्चों की, मिलती है आपको, दिखाते हैं बाद में। चीज़ें तो बेशुमार हैं, वक्त बहुत थोड़ा है असल में ना, वक्त देख लीजिए कि हमारे पास कितनी जल्दी भाग रहा है ना। और जब भी कभी हम रखते हैं प्रे फेयर या ऐसे सेमिनार, तो मेरा तो दिल होता है कि 5-6 घंटे फुल डे सेमिनार हो, लेकिन फिर आप जैसी खवातीन बिजी स्केड्यूल वाली नहीं आ पाती। बहरहाल जो मिल जाए उसके ऊपर शुक्र करना है अल्लाह का, लेकिन यह कि बचपन से कोशिश करें, झगड़े नहीं, मियाँ ने अगर झगड़ना है आपने उसे झगड़ना है तो छोटे बच्चे के सामने भी ना झगड़ें, वो सब सुनते हैं। आप देखें ज़रा से शोर होता है तो एकदम बच्चे ऐसे कांपते हैं ना, महसूस करते हैं। कोशिश करें उनको ऐसी सारी चीज़ों से बचाएं, जैसे उनको जो चीज़ें शैतान के तसरफ में लाती हैं, मसलन म्यूज़िक है, नहीं सुनाए, टेलीफोन आपके अंदर म्यूज़िक था कल तक का बंद कर दें, साइन बेल्ट टोन चेंज करें, कुरान की बात सुनाएं उनको, कैसी सुनाएं। फिर इसी तरह आपको कपड़े ऐसे बच्चे जो पहनते हैं जिसमें भालू शालू पता नहीं क्या कुछ बने होते हैं, अब आप बताइए कि एक बच्चा जो इंसान का बच्चा है, अब आप उसके तस्वीरें ऐसी ऐसी लगाते हैं तो शैतान उसको डराएगा नहीं? माएँ कहती हैं आज ये रोता रहे, सोया नहीं शादी से, हाँ वो फलां गौर से देख रही थी, उसकी नज़र लग गई है, उसकी नहीं शैतान की नज़र लगी है। बच्चे जो होते हैं ना, ये फूलों की तरह होते हैं, ज़रा सा ज़ोर से आप पकड़ेंगे ना गुलाब की बत्ती को बिखर जाएगी, हाथ से हिल जाएगी। तो लिहाजा आपने इस उम्र में बच्चों को बहुत ज़्यादा रखना है। ये जो उम्र होती है ना सबसे छोटी, अब मैं आपको एज वाइज थोड़े से एंड तक चलाती रहूँगी, सबसे छोटी उम्र यानी न्यू बॉर्न से लेके जो शीर ख्वारगी की मुद्दत कह ले 2 साल, ये प्यार 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 लव 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 जितना दे सकते हैं ना, आप बिल्कुल ये सोचें कि ये आपका एक अकाउंट है, इसमें आज आप डाल रहे हैं, देखिएगा ये सारा वापस मिलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वो माँ लगती है तो दूध पीते बच्चे को मार रही होती है अक्सर, कभी बच्चा रो रहा है तो माँ और थप्पड़ थप्पड़ के मारती है, ये आपके थप्पड़ खाने आया है, छोड़ दें इसको आप, खबरदार अगर आपने इस बच्चे को कभी हाथ लगाया। कभी ना बच्चे को डांटे, ना उसके साथ गुस्से से बात करें, बच्चे की समझे, मजबूरी समझे, आगे जाके आपको रीजंस लिखाऊंगी कि बच्चे क्या वजह है, क्यों तंग करते हैं। देखिए माहौल क्या है, कपड़े तो नहीं चुभ रहे, मौसम बहुत गर्म नहीं, बाजू माँ इतना पैक कर देती हैं, ऑक्सीजन रुकी होती है उनकी, उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, अंदर बाजू मुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों को तो यकीन करें हम बिल्कुल खिलौना समझते हैं, हमें ऐसे लगता है हम बस जो हम सोच रहे हैं ना ये वैसे ही सोचे, नहीं वो एक जानदार चीज़ है। उसको बहुत इजी रखें, कम से कम कपड़ों में लपेटा लपाटी में रखें, सुलाना हो तो खूब अच्छे कपड़े पहनाए, मोटे गर्म लपेट के उसके साइड पे एक पिलो रखें, उसको जरा ऐसे लगे कि माँ साथ है, 8-8 घंटे सोएगा। माँ इधर से सुला के आती हैं, उधर उठती हैं तो उठ गया, भाई तुमने ऐसे उसको मैदान में लटा दिया था, वो बेचारा तो माँ को ढूंढेगा ना। आपको नींद आती है ऐसे सीधे लेटे हुए? यानी इसमें एक एक मरहले पे बात करने की जरूरत है, और ये वो चीजें जो उठते बैठते इंसान अपने इर्द गिर्द देखता है। बस माए उनको बच्चों को सुलाना नहीं ठीक तरह से आता, और बाज़ कुछ इस तरह से वहाँ बच्चे को अलग कभी ना सुलाएं। ये भी एक नोट करें पॉइंट, ये जो बचपन के बच्चे की जो बिल्कुल ये भी कुछ मंथ का बच्चा है, कभी उस बच्चे को अलग ना सुलाएं। अब चूंकि बेबी कॉट इतनी महंगी खरीदी है और बेड भी माशाल्लाह डबल लिया हुआ इतने शौक से, तो अब बच्चे को हम कैसे अपने साथ सुला सकते हैं? साथ सुलाइए, प्यार है, वो आपका बच्चा है, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। अच्छा पहले क्या होता था, बच्चा है उसके इर्द गिर्द एक इधर तकिया रख दो, एक इधर रख दो, फिर साइड लम सर पे रख दिया, फिर पाँव पे तकिए रख दिए, फिर फीडर पिलाने के लिए तो माँ को बैठना पड़ता था, फीडरों के साथ भी हैंडल लग गए, उस हैंडलों को नीचे डाल के, यानी बस हम तुम्हें टच नहीं करते। आप फिर अपने आप को देखें, कोई आपको कहे मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना, बस तुम मेरे से दूर दूर रहो, नहीं। इस उम्र में आप जो देंगे ना वो आपको मिलेगा। ये फूल है, ये रुई का गोला है, ये रेशम है। नरम बात करें, इसे मिठास वाली बात करें, किस करें, उसको प्यार करें, उसके हाथ चूमें, उसके पाँव चूमें, ये अल्लाह का एक गिफ्ट है आपके पास। आप अपना गुस्सा उस पर निकाल रही हैं, सास का गुस्सा उस पर, मियाँ का गुस्सा उस पर, गर्मी का गुस्सा, सर्दी का गुस्सा, सो ही नहीं रहा हाय ये। लेकिन यकीन करें मुझे ऐसे लगता है कि आजकल की माँ का एक मसला है, और वो ये है कि वो मसरूफ़ बहुत हो गई है। अब बच्चे वो अभी सो के उठा है, अब उसने नहीं सोना, आप फिर थप्पड़ 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 सुला रहे हैं, नहीं सो रहा, उसको छोड़ दीजिए, खुला छोड़े उसको खेलने दें। आप कहते हैं ये सोए ताकि मैं फिर वो बाजार का एक चक्कर लगाऊँ। अपने काम कम करें। अगर हकीकत में आप चाहती हैं ना कि मुजाहिदाना नस्लें पैदा हों, तो आज से ही, अब हम तो ये चाहते भी नहीं, हम कहेंगे निकालें आगे करें, हम नहीं चाहते, क्योंकि लफ्ज़ मुजाहिद के साथ हमारे जहन में क्लाशनकोफ आती है, हमें ये पता ही नहीं कि मुजाहिद तो वो है जिसके हाथ में कलम है। अगर अगर आपने तकवा वाली नस्लें लानी हैं, अगर सालेहीन पैदा करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुर्रतायन बने ये बच्चे, अगर अल्लाह आपको इनसे दे, तो बचपन से इनके साथ इस उम्र में इनको दिखाएं, बच्चे के सामने लिखें, पढ़े नमाज पढ़े, तो बच्चे को बिल्कुल पास बिठा लें, बच्चे को उसके क्रेडल में डालें, बिल्कुल आपके फेसिंग हो, साइड पर उसको करके आप नमाज पढ़ें। अब ये नहीं कि अल्लाह के वास्ते आप खुद उसको देखती रहें नमाज में। बस मैं देखती हूँ कि माएँ अपने बच्चों को अपने दिल में अल्लाह के बजाय बच्चे को रख लेती हैं, सेल फोन है तो उस पर बच्चे की तस्वीर, हर चीज़ में उसकी तस्वीर, ये अल्लाह के लिए दिल, ये कोई बंदों के लिए नहीं, लेकिन उसको दिखाएं। बिल्कुल आप यूँ सोचा करें कि जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है और मैंने उसको यानी ट्रीट करना, यानी मीन जैसे मैंने उसको कंपनी देनी है दूसरे लफ्ज़ों में। अब आप मेहमान को अंदर बिठा के बस शुक्र करेंगे वो बैठ गए? नहीं, कहते ना अच्छा जिधर मैं हूँ आप इधर ही आ जाए, जो करें उसमें बच्चे को लगाएं। वो बैठा है, ये छोटा है, ज़रा सा बड़ा होगा और बड़ा होगा, आप देखेंगे कि इसको ये सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल महसूस करेगा कि मेरी माँ मुझे देख रही है, करी कुरान पढ़े साथ बैठ जाए, वो बचपन से आपको देखे, चलाए ऊंची आवाज में तिलावत, लोग कहते नहीं नहीं ये बंद करो बंद करो, ये शोर है, तो क्या हुआ, उसको शोर में सोने की आदत डालें, आप कुरान चलाएं, अपने घर में चलता है, बिल्कुल बच्चे को कोई नॉर्मल चीज़ ना समझें जैसे घर के दूसरे लोग हैं। ये जो छोटी उम्र के अंदर ही जो बच्चियां, खासतौर पे जो पहला बच्चा होता है, क्योंकि खुद भी नहीं इतनी समझ होती, ना बताया गया ना कुछ, वो पहले बच्चे से तरबियत ख़राब करती है माएँ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। रोने लगा छुनछुना मुंह में डाल दिया, उसके मुंह में चुस्नी डाल दी, और ज़रा बड़ा हुआ तो वो जरा सीमों से भरा हुआ भालू स्टफ्ड टॉय उसके साथ रख दिया। आप सोचिए ज़रा कि एक इंसान के बच्चे को हम बेजान चीज़ों में लेके रख रहे हैं। आप बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें, उनके साथ आप बिल्कुल इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे वो अपनी एज की चीज़ों को चाहते हैं। फिर बहरहाल इसके बाद यह है कि जब ज़रा सा बच्चा बड़ा हो, और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर आपको खुद भी महसूस होता है कि अब इनकी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, खाना भूख की ज़रूरत बढ़ जाती है, दूध के साथ आप उसको खाना खिलाएं। ज़रूरी नहीं कि आप 2 साल तक ही दूध पिलाएं, पिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3-4 महीने के बाद थोड़ा बहुत ठोस भी खाना दिया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात जो बहुत ही ज़्यादा आपको, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही लगेगी, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट समझती हूँ कि आप शुरू से, प्लीज़ शुरू से दूध पिलाने से अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को डिवेलप करें। वक्त पे दें, वक्त पे खिलाएं। ये नहीं कि बच्चा रोया तो मुंह में दूध डाल दिया, कम से कम उसको 2 से 3 मिनट रुलाएं, कि ये जो है ना, अभी बच्चा रोया तो मुंह में झुंझुना, रोया तो लॉलीपॉप, रोया तो उसके मुंह में कैंडी, ये बेसब्रा कल्चर पैदा हो रहा है। हमने अपने, कभी आप सोचें कि 5-6 साल का बच्चा क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है मेरे, हर वक्त अब उसको चिप्स चाहिए, अब जूस चाहिए, अब कैंडी चाहिए, ये दिस बिल्कुल नहीं मिलेगा। छोटा 40 इंच का बच्चा है, उसकी तो टम्मी छोटी सी होती है ना, लेकिन उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आदी डालते रहे। शुरू में जब वो रोता है उसको थोड़ा सा पिला दे, आहिस्ता आहिस्ता उसका रात का वक्त जो है ना उसको बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात नहीं, बाज सुबह उठ के माँ एहसान जतलाती हैं, सारी रात सोई नहीं, क्यों भाई दूध पिलाती रही हूँ, क्या मतलब है, भाली भालू का बच्चा था ये, सारी रात दूध पीता रहा, फिर कहती उठाया नहीं जाता, अब कंधों में दर्दें शुरू हो गई हैं, क्यों आप इतना मोटा कर रहे हैं उसको, वक्त पे पिलाएं। इस तरह से करें कि ईशा पढ़ के आप खूब उसको अच्छी तरह पिला ले। अच्छा एक और जुमला भी गौर से, पेट भर के पिला दो इसको। नबी सल्लम ने क्या कहा, 3 हिस्से, 2 हिस्से खाना, 1 हिस्सा खाली। तो जब ये मेरे और आपके लिए है, वैसे तो हम भी नहीं मानते इसको, क्योंकि हमने बचपन से हमारी माँ ने हमें पेट भर भर के पिलाया। बाज माएँ तो उंगली डाल डाल के देखती हैं कि हलक तक आ गए, फिर वो दूसरा बच्चा पकड़ेगा तो गड़क सारा दूध बाहर। भैया आप उसके अंदर कोई सांस की जगह ही नहीं रखते तो क्या होगा। मैं आपको किसी का वाक्य सुनाती हूँ, बड़े मजे का वाक्य। दीनदार हैं तो उनके पास उनका दोस्त आया, तो ये खाना खा रहे थे, तो इन्होंने उसको ज़बरदस्ती कहा आ भाई आओ हमारे साथ खाओ ना, तो उसने कहा कि मैं तो खाया, मेरे पेट में तो कतरा जगह नहीं, उसने जिसने मेहमान ने आने लेने कहा। तो ये कहते हैं वैसे दोस्त ये तो बहुत बुरी बात है, तुम इतना खा, इतना तो खाना ही नहीं चाहिए कि हमारे पेट में एक कतरा जगह ना हो, हमेशा मोमिन के पेट में इतनी जगह हो कि अगर कोई दूसरा भी कहे तो खा सके। तो उनके दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि मैंने इनकी इस बात से बहुत सीखा है, कभी नहीं था ये सोचा कि भाई अब तो ज़रा बराबर जगह नहीं। वक्त पे खिलाएं, पिलाएं, दूध पिलाएं, थोड़ा पिलाएं, और थोड़ी सी भी जगह हो तो छोड़ दें, और फिर इसके बाद है कि उसको दूध मांगते ही फ़ौरन ना दें, थोड़ी देर 2-4 रोले, और रोने से आपको पता है कि एक्सरसाइज होती है, बच्चे के पेट में जो भी जगह गैस होती है वो निकल जाती है। फिर उसके बाद बहरहाल अब आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो सिर्फ आपको जब टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन यह है कि करें वक्त पे दें, फिर ज़रा बच्चा और बड़ा होगा वक्त पे मिलेगा आपको। मुझे एक माँ याद है, फीडर बना पड़ा है, बच्चे को नहीं दे रही, भी क्या मसला, कहती है अभी 5 मिनट रहते हैं इसका टाइम नहीं हुआ, मैं इसको वक्त पे देती हूँ। ये इंतहाई बुरी बात है, फिर बच्चे 4-5 साल के होके फिरते खाते चलते खाते, उधर फेंक उधर फेंक, पता नहीं सफाई कैसे कर सकती हैं माया, पूरा घर तो आप नहीं देखेंगे ना कि कहाँ खिराया है, कुकी गिर गई, चिप्स गिर गए, ये हो गया, एक देखा खाना है बस, खाना है तो भी खाना है, नहीं तो सब्र करो फिर बाद में मिलेगा। आप 2-3 साल की उम्र में बच्चे को अगर इतना यूज टू करेंगे, सोने जैसी चीज़ उसके सामने आ जाएगी, वो नहीं खाएगा जब तक कि उसको उसका वक्त नहीं होगा। तो इससे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे बाद वाले बहुत सारे काम रुकेंगे, बच जाएंगे वक्त हमारे बाद। जब हम कहते हैं वक्त नहीं मिलता, कभी आप सोचा करें अच्छी भली औरत चलती फिरती सब, जो ही उसके पास बच्चा आता है या प्रेग्नेंट होती है वो इस तरह हैंड टू माउथ क्यों हो जाती है। हमने अपने बच्चों को सर बोझ बना लिया। पहली औरतें यकीन करें प्रेगनेंसी तक भागती दौड़ती होती थी, और बस दफ़ा ऐसी औरतों की कहानियां सुनी हुई हैं कि वो कहती थी जब दर्द लगते थे तो हम और ज़्यादा काम करते थे, क्योंकि घर के मर्दों को पता ना चले कि इनको तकलीफ़ है, और इधर मर्द उधर हुए, और कहती थी अंदर जाके बच्चा पैदा हो जाता था, और फिर 1-2 दिन में फ़ौरन उठ जाना कि शर्म आती है, तब शर्में आती थी, अब शर्म नहीं आती ना, पहले से ही पता चल जाते हैं हालात की क्या कहानी है। ससुर को भी पता है, देवर को भी पता है, सबको पता है खैर से घर में बच्चा आ रहा है, बच्चे को पता है कि बच्चा आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमारे आने वाले जो माहौल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बचपन से जिनको ख़राब कर लेते हैं फिर बड़े होकर ठीक करना मुश्किल होता है ना। तो बहरहाल आप देखिए कि ये सारे काम करते कराते हुए इंसान अपने बच्चों को बड़ा करता है, फिर इसके बाद आप देखिए कि जब बच्चे थोड़ी सी शऊर की उम्र में आते हैं, यानी शीर ख्वारगी पूरी हुई 2 साल के बाद, अब इसके बाद अब आप लोग बच्चे की ये वक्त जो है ना, अब इसमें मोहब्बत है ना, पहले मैंने क्या लफ्ज़ बोला था, लव लव लव, अब क्या है, लव 2 कम करके ना उसमें से 1 लफ्ज़ उसमें तरबियत डाल लें, प्यार तो था ही अब 7 तरबियत डाल दें, रोका राखी टोका टाकी किस हद तक करनी है, कल मैं आपको उसके स्टेप्स लिखाऊंगी, लेकिन आज जनरली समझ लें कि बिगड़ने से पहले उसको ठीक कर लें। हमारे यहाँ होता है पहले खूब बिगाड़ते हैं, जिस उम्र में तरबियत करनी चाहिए उसमें हम लाड करते हैं, और जिस उम्र में बड़े होने पे जरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए बच्चे के साथ, उस उम्र में हमारा पारा भर चुका होता है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। घर आए हर बंदे के साथ ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, इसको समझाएं, ये करती है, ये करता है, ये बड़ा नीट है, यानी बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस उम्र में नजर जरा गाढ़ी रखनी थी, जो 3 साल से लेके आप कह लें कि 8 7 8 साल की जो उम्र है ना, 10 साल हद कर ले, यानी 10 से 3 साल का जो वक्त है ना, ये तरबियत का है, जितनी करनी है कर ले। इखलाकी तरबियत, ईमानी तरबियत, नफ्सियाती तरबियत और जिंसी तरबियत, ये 4 मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं बच्चों की तरबियत के, जिसकी नज़र से आपने अपने बच्चों को देखना है। ईमानी तरबियत में क्या कुछ आएगा जरा नोट कर लीजिए जल्दी से। आप देखिए कि बच्चों के ईमान की बहुत फिक्र करनी है। ये एक वो वक्त है कि जिस वक्त में आप अपने बच्चों को जो समझाएंगे, इंशाल्लाह वो एक जगह पे लिखी हुई चीज की तरह हो जाएगा। सबसे पहले इसका आगाज होगा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाने से। बचपन से माएँ इसकी फिक्र करें कि बच्चों को जब भी कलमा पढ़ाएं, अल्लाह की मोहब्बत दिलाएं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से के बारे में सोचना सिखाएं। खाना दें तो शुक्रिया सिखाएं, बेटा तुम्हें ये किसने दिया, सिर्फ अपने जुमले बदलने की देर है, यकीन करें। ये कहना ना अम्मी लेके आई, मैं लेके आती हूँ, नहीं बेटा अल्लाह ने अम्मी को कहा कि लेके आओ, यानी अपनी हर चीज़ में ना अपने अपने आप को पीछे कर दें और अल्लाह ताला को आगे ले आए। फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि अभी बच्चे में जब शऊर आ रहा है ना, अकल और शऊर आ रहा है, तो सबसे पहले उसे हलाल और हराम के अहकाम सिखाएं। अब क्या करेंगे आप, उसको फिक्र पढ़ाएंगे, सूरत मायदा पढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको हलाल और हराम का फर्क कैसे, देखो भाई का नहीं खाना, देखो तुम उसकी कैंडी ले आए हो, ये तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा, ये तो नहीं खाते। अच्छा दोस्त से कैंडी खाई थी बेटा, देखा था उसमें क्या है, यानी बच्चे को भी ये पता चल जाए कि मेरे पेट में क्या आना है। आप फील करेंगे कि खाने पीने की चीज़ों के बारे में बच्चे बड़े स्टिंजी होते हैं, छोटे दिल के होते हैं। कहीं कैंडी दिखी खा ली, अब हम फतवा दे रहे हैं चोर चोरी की, हाथ काट दूंगी, चोरी की सजा हाथ काटना, अल्लाह के वास्ते उसको ये फिक्र ना पड़ाए। बच्चे को कोई चोरी चोरी नहीं पता होती, याद रखे बच्चे की फितरत में जिसको पोजेसिव होना इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आप इसको किसी भी तरह समझ लें, पोजेसिव बंदा कौन होता है जो कहता है ये चीज़ मेरी है, हर चीज़ मेरी है। आप देखिए बच्चों में ये बदर्जा उत्तम मादा होता है, ये मेरी है, हर चीज़ को अपनी समझता है। आप कैंडी कहीं पड़ी देखी खा ली, उस वक्त कुछ ना आपके ये क्या खाई, उम्र देखे उसकी, वक्त देखें दूसरों के बीच में, नहीं, फिर उसको बाद में अलग से बताएं बेटा ऐसे तो नहीं खाते। और आप कैसे कहेंगे, जैसे आप मिसाल है कि ये कैंडी है और बच्चे ने खा ली, तो आप उसको बाद में बेटा अगर आप देखें दूसरे लम्हे में आप ये करें उसकी कोई चीज़ हो ना तो आप ले लें बाद में। हमारी माओ का एक बहुत बड़ा मसला है कि जब बच्चे को गलत काम करते हैं ना, बस उस वक्त माओ को गुस्सा आता है, 2 3 मिनट में एक थप्पड़ थप्पड़ लगा के 2 4 बातें सुना के ना खुद भी भूल जाती हैं, बच्चे को भी भुलाती हैं। बहुत बुरा तरीका है, सब्र करें, जज्ब करें। आप सब्र, इसने इसने बच्चे इस दूसरे बच्चे की खा ली है, आप सब्र करें, आप क्या करें, वक्त का इंतजार करें, फिर देखें जिस वक्त उस आपके बच्चे के हाथ में आपको खाने की चीज़ है, आप उसकी पकड़ के खाएं। हाँ रोएगा ना, चीख मारेगा, ये क्या किया, तो कहना बेटा देखो मैंने आपकी ली है ना तो आपको बुरा लगा है, तो सुबह आपने भाई की ली थी या वो दोस्त की ली थी ना उसको भी बुरा लगा है, फिर कभी नहीं करेगा। कभी भी फौरन ना टोके, हम फतवे तक दे के आ जाते हैं फिर दूसरों में शर्मिंदा करते हैं। मैं आपको एक जुमला बार बार कहूँ, अगर बीच में तो बुरा ना माने, जो आप अपने बारे में सोचते हैं ना, आज से आप अपने बच्चे के लिए सोचें। जो चीज़ मुझे बुरी लगती है ना कि मुझे कोई बीच में टोके, तो आपके बच्चे को भी बुरी लगती है। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है ना, मुझे खुशी होती है, तो बच्चे को भी। ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है, ये कैसे हो सकते हैं कि ये हमसे मुख्तलिफ हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चों को बिल्कुल नज़र रखें उन पर, उनके ऊपर जो भी उनकी ज़िंदगी में है, कभी अपने बच्चे को बददुआएं ना दें, गालियाँ ना दें, हर वक्त चीखो चाड़ा और ये और वो, कतल नहीं। बाद अब हम अपने बच्चों को इलाज के नाम पर इतने मुश्किल किस्म के इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं लगवाने की। आप कहेंगे देखा याद ही अपॉइंटमेंट है तो यही कैंसिल हो गई डॉक्टरों की। यकीन करें तरस आता है माओं पे जो बच्चे डॉक्टरों के ऊपर लेके जाती हैं और बैठती हैं, और जिस औरत के 2 3 बच्चे हैं और खुद भी है मियाँ, तो घर में आप देखें हर हफ्ते ही कोई अपॉइंटमेंट होगी डॉक्टर की, तो बीमार हो के इतना नहीं लोग डॉक्टर पर जाते हैं जितना बगैर बीमार हुए जाते हैं। इवॉइड करें, नेचुरल रखें। अब अमेरिका में इस चीज़ की ज़रूरत इतनी ज़्यादा लोग महसूस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं तो गालिबन सिटीजन के लिए फ्री है, लोग उसको छोड़ के घर में, जैसे वहाँ प्रोफेशनल ऐसी जिसको पाकिस्तान में दाया कहते हैं, नेचुरल हर्ब्स के साथ इलाज, हर्बल इलाज चीज़ें होती हैं, खुद घर में डिलीवरी करा रही हैं। क्यों? कहती हैं हमें शुरू में अपने बच्चे को टीके और ये चीज़ें नहीं लगवानी, बिल्कुल आसान रखें उनको। फिर इसी तरह आप देखिए कि बच्चे को अगर आप रोने देते हैं तो बहुत ना रोना है। बास लोग हमारा लाड होता है और बच्चे की मुश्किल, अब बच्चा चीखू सा हो गया ज़रा चीख सा उसकी, तो जाके उसकी गले में रोड़ते हैं, झंझोड़ते हैं। फिर बास कहते हैं जब तक बच्चा ना रोए मुझे मज़ा नहीं आता है। फिर बाद दफ़ा छुड़ाते हैं तो आप बताएं कि उसको बाद में ये अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। फिर आप देखिए कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा ना, जैसे उसको शऊर शुरू हो गया, समझ आनी शुरू हो गई है, तो फिर आप उसको अहमियत दें, आप उसकी जगह बनाएं घर में। डॉक्टर आप एयरपोर्ट जहाज में सफ़र करते हैं, वो आपसे पूछते हैं जी कितने साल का बच्चा है, बड़ा है, इन्फेंट है, 12 साल से छोटा है, बड़ा है, हर जगह जगह बनी हुई है ना। आप अपने घर में अब आप बच्चे को जगह दें, इंपॉर्टेंस दें, कुर्सी उसकी भी रखें, प्लेट उसकी भी रखें, उसको अलग ना करें, वो आपसे ही तो सीखेगा, इज्जत से उसको भी दें, उसके आगे चीज़ फ़ौरन छीन ना लें, चलो चलो भाग जाओ। हम इतनी इंसल्ट करते हैं अपने बच्चों की, मैं कहती हूँ कि अगर हमें ज़रा सा भी शऊर होना तो हम अपने बच्चों की इज्जत ना उस बचपन में मजरूह कर देते हैं। ऐसी उसकी बातें आज अगर आप ये बात पल्ले से बांध के घर ले जाएं कि मैंने अपने न्यू बॉर्न बेबी या 2-3 साल के बच्चे की भी किसी से शिकायत नहीं लगानी, जैसे आप अपनी 14 या 15 या 16 ईयर्स की बच्ची की शिकायत लगाएं तो वो गुस्सा करती है ना कि अम्मी आपने मेरी बात क्यों मेहमानों को बताई, अम्मी आपने ये क्यों किया। बाज माँ बच्चियाँ सिर्फ इसलिए माओं के साथ दावतों और दरसों में नहीं आती जाती कि माँ ने शिकायतें लगानी है, लेकिन ये जहन में रखिए कि छोटे बच्चे को भी उतना ही बुरा लगता है, लेकिन वो भी कर नहीं सकता, इसलिए आप उनको शुरू से अच्छे तरीके से रखें। बच्चे के अंदर कुछ ज़रा फीलिंग आए ना बीमारी की, थोड़ा सब्र करें। पहले देखे माएँ घर से कुछ ना कुछ कर करा के दे देती थी और बच्चे ठीक होते हैं। और आपको मैं एक साइंस की बात बताऊं, हमारी बॉडी का फितरत ने, अल्लाह ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया, इधर आपको एक मच्छर काटता है ना हाथ पे, उसी वक्त आपके दिमाग से एक सोल्यूशन कटक करके निकलता है जो उस मच्छर के डंक का जहर होता है। यदि मसलन अगर आप एस्प्रीन खाते हैं ना बाहर से, वो कुछ कर तो आपके दिमाग से भी एस्प्रीन निकलती है और वो फौरन आपके ब्लड में आती है। थोड़ा सा आप सब्र करें, थोड़ी देर में जब ब्लड इधर आएगा ना तो यहाँ की माँ ख़त्म कर देगी, आपको खाने की जरूरत ही नहीं। ये बेसब्रेपन में दवाइयाँ खाते हैं। बच्चों को शुरू से आदत डालें, मैंने नहीं जाना डॉक्टर पे, मैंने नहीं इसको लेके जाना, दम कीजिए। नबी सल्लम अपने नवासों को, हज़रत हसन और हुसैन को दम किया करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक मसनून दम हमें मिलता है, आप ये किताबों में पढ़िए, इसको लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसे फ़ायदा है। सुबह शाम की दुआएं, सूरह फातिहा बच्चे के पास 7 दफ़ा उसको पढ़ के सुबह फूकें, कुल हो अल्लाह तीनों कुल पढ़ के हाथ जिस्म पे नबी सल्लम अपने भी फेरते थे सोते हुए, छोटे बच्चे को नंगा करें पूरा, बिल्कुल खोलें, आप पढ़ें उसको 2-3 कुल पढ़ के फिर उसके जिस्म पे हाथ फेरें, ऊपर से शुरू करें। जो सुन्नतें बड़ों से मनवानी है वो बच्चों से मनवाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारा मसला हल नहीं होगा, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर आप देखिए कि जो बच्चों का हक है उसको दें। एक मौके पे नबी सल्लम के पास एक ऐसा मामला था कि आपकी राइट साइड पर बच्चा बैठा हुआ था, लेफ्ट साइड पर बूढ़ा था, यानी ऐसा हक था कि नबी सल्लम ने कुछ पी के दाएँ हाथ में देना था, तो बच्चे की बारी थी लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्ग था, तो आपने उस बच्चे से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये अपना प्याला पहले इस बूढ़े को दे दूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मामले में मैं ये नहीं चाहूँगा, मुझे ही दे क्योंकि आपका जूठा मैं पीना चाहता हूँ। तो आपने फिर वो बूढ़े को छोड़ के इस बच्चे को दिया। इम्पोर्टेंस दे, अहमियत देंगे इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि बच्चे लाएंगे। फिर इस तरह इस उम्र में एक माँ बाप से जो कमी होती है जिसका आगे किरदार पर बहुत नेगेटिव असर होता है, और वो क्या है कि हम बच्चों के बीच में अदल नहीं कर पाते। ये तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, ये बाप का लाडला है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ये तो मेरा प्यारा है। आप सोचें वो छोटा सा मासूम दिल ऐसे नाजुक सा, उस पर कितने तीर चलते होंगे हमारी बातों के। कभी ऐसी बातें ना करें। बच्चों को, दो बच्चों को आपस में लड़ाना आप अपनी नस्ल को तुड़वाने के बायस है। खालो 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 भाई आ जाएगा, यानी भाई दुश्मन है, तुम खा लो नहीं तो भाई खा जाएगा, ये जुमला घरों में कितना बोला जाता है। छोटे बच्चे की माँ इतनी साइड लेती है, वो बड़े को भी चलो कोई नहीं ये छोटा है, ये भी एक जुमला एक कोड वर्ड है कि कभी किसी बच्चे को उसकी उम्र का बेनिफिट ना दें। मसलन आपका एक बच्चा एक 2 साल का है और दूसरा बच्चा आपका 6 साल का है, कभी 6 साल के बच्चे को ये ना कहो चलो ना कोई बात नहीं छोटा भाई है, क्या मतलब उसके दिमाग में बैठेगा छोटा भाई जालिम है। और उसको ये भी ना कहो नहीं बड़ा भाई है अब इसको दे दो ना, नहीं जो इंसाफ है वो इंसाफ है, बराबरी बराबरी में, ईद आई ईद ईद ही सबको बराबर दे। ज़रूरियात अलग है, एक बच्चे को कंप्यूटर की ज़रूरत है, दूसरे को नहीं है, ठीक है, बड़े उसको समझाते हैं कि बेटा अभी आप छोटे हैं, इसको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि जान तो उसकी भी उतनी है। अगर मारा जाएगा तो कसास भी उसका उतना है, वरासत में हिस्सा भी सबका एक है। आपको पता है कि एक बच्चा पैदा हो और चीख मारे और मर जाए, उसको विरासत में उतना ही हिस्सा है जितना 50 साल के लड़के को आपके मिलेगा, बराबर का हिस्सा है। तो जब अल्लाह ने हिस्से बराबर के दिए हैं तो आप छोटे बड़े कैसे दे सकते हैं। एक औरत का मिसकैरेज कर दिया गया था एक मौके पे, उसको मारा तो उसका बच्चा ज़ाया हो गया, तो नबी सल्लम ने पूरे बड़े बंदे की दिया दिलवाई थी। तो लिहाजा अपने बच्चों के साथ इस किस्म की बातें ना करें, इससे हमारे अंदर फिर नुकसान होता है। आज अमूमी तौर पर जो रवैये दिखते हैं ना, वो हमें लगता है कि जैसे बच्चे ठीक नहीं हम पाल रहे, मसले मसले आ रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। पहली बात यह है कि माँ बाप को बच्चों के साथ किन बातों पे सख्ती करनी है और किस पे अपनी बात पे जमना है, इसका फ़र्क नहीं पता होता। यानी वो हार्शनेस और फर्मनेस का फ़र्क नहीं जानते। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और बहुत बड़ी वजह जो आज के दौर के ये जवान होते हुए बच्चों के हैं, यानी ये अर्ली यंग जो रहे बच्चे, वो क्या है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, माँ बाप क्या आपस के झगड़े, फिर माँ बाप खुद उन आदतों पे जमे हुए नहीं है जो बच्चों में हम चाह रहे हैं, कंसिस्ट नहीं है। कभी टोका गुस्सा आया टोक लिया, फिर 2-4 हफ्ते कुछ नहीं कहा उसी बात पे। अगर आपको अपने बच्चे से एक आदत ख़त्म करनी है ना, एवरी टाइम जब वो करे उसको रोके, फिर 2-4-3 दफ़ा में छोड़ देगा। आज करते हैं मना, जब मूड अच्छा होता है कुछ नहीं कहते, दूसरों को भी सुनाते हैं आज इसने ये किया था, बाद में दूसरों के बाद में उसको ऐसा करते हैं। तो जिस बात को अपने पसंद करते हैं उसको हमेशा नापसंद करें। फिर इसी तरह माँ बाप को खुद नहीं पता सच्ची जो बात है कि करना क्या है। मैं कहती हूँ माँ बनने से पहले ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ के दर्जे पे। ऐसे इदारे होने चाहिए हमारे मुल्कों में मुसलमानों के, ऐसी कोचिंग सेंटर्स हों जो शादी से पहले शादी के वजूहात समझाएं, बीवी बनना सिखाएं, बाप बनना सिखाएं, शौहर बनना सिखाएं, जो ही प्रेगनेंसी हो ये कोर्सेज कराएं। हम दूसरे कोर्सेज में पढ़े रहते हैं, फिर बाज़ दफ़ा बच्चों के बिगाड़ की वजूहात में ये भी चीज़ होती है कि हम अपने बच्चों को उनके जज्बात का इजहार नहीं करने देते, दबाते हैं, चुप चुप चुप, बस 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 बोलो नहीं। कभी आप देखिए कि हमारा बच्चा कुछ बोलने लगे होंगे चुप, बच्चे नहीं बोलते। अच्छा, कभी हमने भी नहीं अपने सच्ची बात है जज्बात का इजहार किया। मैंने एक तजुर्बा किया अपने रिसेंटली मौके में, अब एक माँ है उसको लगता है ये जवान हो रहे हैं बच्चे मेरी सुनता नहीं, ये वो नहीं सुनती ये वो। मैंने उसे कहा ये बताओ तुमने कभी इसको कहा कि आई लव यू, क्या मतलब है, और सर पे चढ़ाऊँ इसको, क्या मतलब है। आप 10-100 नहीं तो कम अज़ कम 90 दफ़ा तो कह सकते हैं बच्चे को बेटा आई लव यू, हम प्यार कर रहे होते हैं। बस माएँ केयर भी कर रही, वो समझती है बच्चे को इसी से पता चल जाएगा कि मुझे उनसे बहुत प्यार है, नहीं तो और क्या, मैंने इनको नहीं पाला भला। आप दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि बेटा आई लव यू। आपका बच्चा अमूमन होता क्या कि जो बहुत छोटा बच्चा घर में आता है उसको तो चुमोट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो पता नहीं क्या कुछ, और बड़ा और पीछे हो जाता है, उसको कोई पूछते ही नहीं, फिर और कंपटीशन होता है, फिर वो छोटे बच्चे को अपना दुश्मन समझता है। आज जाके ना अपने घर में सबसे छोटे को नहीं उनसे बड़े बच्चों को प्यार करना है, और कल बताऊंगी कि टीनेजर्स को भी प्यार कर सकते हैं, बड़े बच्चों को भी प्यार करें। टीन इधर आपका बच्चा आपसे भी कद में लंबा है, उसका कान पकड़ के नीचे करें, क्या हुआ, किस कर ले मुंह पे, बालों में उंगलियां फेरें, हक दें मेरा बच्चा, देखे तो सही वो बच्चे किधर जाते हैं। हम उनको नहीं देते ना तो बाहर से लेने लगते हैं, ये ऐसे ही जैसे ज़रा सी इधर खिड़की खुली रहेगी ना हवा सारी अंदर आ जाएगी, ज़रा सा हम लूप होल देते हैं, क्योंकि वक्त ही कोई नहीं, फुर्सत ही कोई नहीं, माओ की मसरूफियात और डिस्ट्रैक्शन ही बड़ी है, उन्होंने अभी कपड़े भी सिलाने हैं, ज्वेलर पे भी जाना है, पार्लर पे भी जाना है, उन्होंने डाई भी करानी है, मुसीबतें इतनी पड़ी हुई है, अभी उसने खाना भी पकाना है, रात को केक भी बनाना है, परसों बिरयानी भी बनानी है, पीछे उधर, और अपने बच्चों को माँ यूं लताड़ रही होती है, पिछड़ो पिछड़ो, ये तो मुसीबत है, जान में डाली हुई है। मैं कहती हूँ आप सारे काम छोड़ दें, आप अपने बच्चों को हर्ट ना करें, ठीक है। तो ये था आज आपके नसीब में जितना भी हम कर सकें। जज़ाकअल्लाह खैर वाहसन जज़ा, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।